आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर आला रियासत के सैलाब से मुतासर इलाकों का आज दौरा करेंगे, जबकि मगरबी बंगाल में रात भर की बारिश में मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में पाकिस्तान की मजम्मत की है कि उसके सियासी निज़ाम पर फौज का गलबा है और वहां अवाम पर जुल्म व ज्यादती की जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो रूस के कंट्रोल वाले यूक्रेन के इलाके को वापस हासिल करने में यूक्रेन की मदद कर सकती है। और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर फोर मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2 वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। कल नई दिल्ली में अश्विनी वैष्णव ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि पहली ट्रेन के कल पुर्जों और इसे चलाए जाने के सभी तजुर्बात कामयाब रहे हैं और उम्मीद है कि दूसरी ट्रेन के ये तजुर्बात अगले महीने के वस्त में मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों रेलगाड़ियों का आगाज एक साथ किया जाएगा।
इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया तो मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूंगा 12,000 में से 10,000 ट्रेन इवन बिफोर पीक रश अक्टूबर कम्स उससे पहले नोटिफाई हो जाना ये रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ। करीब 150 ट्रेन होंगी जो कि टोटली अनरिजर्व होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे मूवमेंट के लिए चलेगी और 50 और गाड़ियां नोटिफाई हो जाएगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर। 1 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन का मूवमेंट चालू होता है जो कि चलेगा करीब करीब 15 नवंबर तक।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन BEML कंपनी ने तैयार की है। इस ट्रेन में 1,128 मुसाफिर एक साथ सफर कर सकते हैं। ये ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकेगी, जो मुल्क में 24 घंटे के अंदर अंदर आने और जाने वाली सबसे तेज रफ्तार ट्रेन होगी। रेलवे के वजीर ने दिवाली और छठ त्योहारों के दरमियान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 खसूसी रेलगाड़ियां चलाने का भी ऐलान किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके मराकशी हम मनसब अब्दुल लतीफ लुदई ने कल मराकश के बरशीद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह को भारत और मराकश के दरमियान इर्तिखा पजीर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए तारीखी लम्हा करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि इस मरकज में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा पहियों वाले बख्तर बंद प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जिसे TASL और DRDO ने मुश्तरक तौर पर डिजाइन किया है। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विजन में सिर्फ भारत की अपनी जरूरियात के लिए साजो सामान तैयार करना नहीं है, बल्कि उस सलाहियत को भी हासिल करना है जिससे भारत दुनिया के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आला मियारी मसनूआत का काबिल एतबार जरिया बन सके। वजारत दिफा ने बताया कि इस माहदे के तहत TASL ये गाड़ियां अगले महीने से रॉयल मोरक्कन आर्मी को फराहम करेगी। ये मरकज दिफाई एतबार से सल्तनत मराकश का सबसे बड़ा और भारत की प्राइवेट कंपनी का अफ्रीका में अपनी नौयत का पहला मरकज होगा। ज़िरात और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में अहम दालों और तिलहन की खरीद को मंजूरी दे दी है। कल मुनक़िदा आला सतही वर्चुअल मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब चौहान ने जोर दिया कि सरकारी खरीद का पूरा अमल शफाफ, डिजिटल और किसानों पर मरकूज होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इस पहल से सिर्फ असल किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए। ज़िरात के वजीर ने बिचौलियों के इस्तेहसाल से बचाने की रियासतों को हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों रियासतों के किसानों से उड़द और तूर की मुकम्मल खरीद के साथ साथ मूंग, तिल, मूंगफली का तेल और सोयाबीन की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिसकी तखमीना लागत 13,800 करोड़ रुपए है। ज़िरात की वजारत के मुताबिक खरीद का पूरा अमल ई समृद्धि और ई संयुक्ति पोर्टल्स के जरिए डिजिटल तरीके से अंजाम दिया जाएगा, जिससे रकूमात सीधे किसानों के बैंक खातों में अदा की जा सकेंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग आज बिहार के पटना में वाकई पार्टी के रियासती सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में होगी। 80 साल से ज्यादा अरसे के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का इनेकाद पटना में किया जा रहा है। पार्टी के बिहार इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि मीटिंग के दौरान बिहार असेंबली इंतखाबात और रिजर्वेशन की हद बढ़ाने समेत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग की सदारत कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सीनियर पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे। آنے والے بہار اسمبلی انتخابات کے تناظر میں اس میٹنگ کو بہار کانگریس کے لیے کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ سیوا اور سشاسن یعنی عوامی خدمت اور اچھی حکمرانی کے منتر سے تحریک حاصل کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت تبدیلی اور ترقی کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ آج ہم خصوصی سیریز سیوا پرو میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح مودی حکومت انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے ذریعے بھارت کے مستقبل کو تشکیل دے رہی ہے۔
سیمی کنڈکٹرز جدید الیکٹرانکس کے لیے لازمی ہیں جو ایک طرح آلات کے دماغ کا کام کرتے ہیں۔ 2021 میں جب سے اس مشن کا آغاز ہوا ہے، بھارت نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سیمی کنڈکٹر کے سفر کو نظریے سے حقیقت میں بدل دیا ہے۔ اس مہینے نئی دلی میں سیمیکون انڈیا 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر چپس کو ڈیجیٹل ڈائمنڈز قرار دیا۔
سیمی کنڈکٹر کی دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے، آئل واز بلیک گولڈ بٹ چپس آر ڈیجیٹل ڈائمنڈز۔
انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کی بنیاد پر 76,000 کروڑ روپے کی لاگت والا سیمیکون انڈیا پروگرام چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے تیار کرنے والی کمپنیوں کو 50% مدد کی پیشکش کی جاتی ہے۔ ڈیزائن سے مربوط ترغیبی اسکیم کے ذریعے 280 سے زیادہ تعلیمی اداروں اور 70 سے زیادہ اسٹارٹ اپس کو اس اسکیم میں شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کی سیمی کنڈکٹر کے سفر میں سیمیکون انڈیا 2025 ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے وزیراعظم نریندر مودی کو بھارت میں بنائے گئے چپس کا پہلا سیٹ پیش کیا۔ ان اقدامات سے ایک خود کفیل سیمی کنڈکٹر صنعت کی تعمیر کی جانب ملک کی لگاتار ترقی کا اظہار ہوتا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات سے بھارت کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو آسان بنانے کی جانب اہم قدم کا اظہار ہوتا ہے۔ اب لوگ جی ایس ٹی اصلاحات کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جس پر اس مہینے کی 22 تاریخ سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت جی ایس ٹی کونسل نے 5%, 12%, 18% اور 28% کے پہلے والے 4 زمروں کے نظام کو 5% اور 18% کے 2 زمروں والے نظام میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہت سی اشیاء اور خدمات پر عائد ٹیکسوں کی شرحوں میں کمی کیے جانے سے شہریوں کو خاطر خواہ راحت ملی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
عام آدمی کو راحت فراہم کرتے ہوئے حفظان صحت کے شعبے میں ٹیکس شرحوں میں کافی زیادہ کٹوتی کر دی گئی ہے۔ صحت اور زندگی بیمہ پریمیم پر عائد جی ایس ٹی کی شرحیں جو پہلے 18% تھیں، اب اس پریمیم کو ٹیکس سے پوری طرح مستثنی کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس قدم سے صحت بیمہ کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور اوسط درجے کے کنبوں کے لیے طبی اخراجات کم ہو جائیں گے۔ حکومت نے زندگی بچانے والی 33 دواؤں پر بھی ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ حفظان صحت کے شعبے میں یہ اصلاحات مزید صحت مند بھارت کی جانب ایک اہم فیصلہ ہے۔ درشٹی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل نئی دلی میں منعقدہ عظیم و شان تقریب کے دوران سال 2023 کے 71 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے۔ اس موقع پر سینما کے شعبے میں گنا قدر تعاون کا اعتراف کرتے ہوئے آزمودہ کار اداکار، ہدایت کار اور فلم ساز موہن لال کو باوقار دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بہترین فیچر فلم کا ایوارڈ ہندی فلم 12th فیل کو دیا گیا، جبکہ بہترین ہندی فیچر فلم کا ایوارڈ ہندی فلم کٹھل اے جیک فروٹ مسٹری کو ملا۔ بہترین اداکار زمرے میں فلم اداکار شاہ رخ خان کو ان کی فلم جوان کے لیے، جبکہ اداکار وکرانت میسی کو 12th فیل کے لیے بہترین اداکار قرار دیا گیا۔ بہترین اداکارہ کا انعام اداکارہ رانی مکھرجی کو فلم مسز چیٹرجی ورسز ناروے کے لیے دیا گیا۔ محکمہ خلا کی تجارتی شاخ نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ اور نیشنل سینٹر فار میڈیم رینج ویدر فورکاسٹنگ کے درمیان کل نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس مفاہمت نامے کا مقصد مشن موسم پروجیکٹ کے تحت دلی این سی آر اور چنئی میں 2 ڈائریکٹ براڈ کاسٹ نیٹورک اسٹیشنوں کا قیام ہے۔ مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس آج ریاست کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیں گے۔ شدید بارش اور لوور تیرنا پروجیکٹ سے پانی چھوڑے جانے کے بعد تیرنا ندی میں شدید طغیانی آ گئی، جس سے ریاست کے لاتور ضلع کے اوسط تعلقے کا گاؤں شدید طور پر متاثر ہوا ہے۔ کئی گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں اور احتیاطی قدم کے طور پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سیلاب کے پانی کی وجہ سے لاتور سولاپور قومی شاہراہ کو جزوی طور پر بند رکھا گیا تھا۔ ادھر مغربی بنگال میں رات بھر ہوئی شدید بارش میں جان گنوانے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے۔ راجدھانی کولکاتہ شدید متاثر ہے۔ مغربی بنگال کے مختلف حصوں میں شدید بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ علاقائی موسمیاتی مرکز کے مطابق कोलकाता में पिछले 39 साल के दौरान महज 6 घंटे में इतनी शदीद बारिश कभी नहीं हुई। दफ्तर मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ मकामात पर अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज कलर वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और शुमाल मशरिकी रियासतों में आज शदीद बारिश हो सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है। भारत ने यह नुक्ताचीनी इस फोरम को अपने खिलाफ बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयान देने के लिए इस्तेमाल करने पर की है। जिनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन से वाबस्ता क्षितिज त्यागी ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल के 60वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह भारत के इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने की बजाय इस इलाके को खाली कर दे और अपनी मईशत को बचाने पर तवज्जो दे जो आखिरी सांसें ले रही है।
A delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people.
उन्होंने ये बात भी खास तौर से कही कि पाकिस्तान में ऐसा सियासी निज़ाम है जिस पर फौज का गलबा है और इंसानी हकूक का रिकॉर्ड लोगों को सताए जाने से दागदार है। जनाब त्यागी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह दहशतगर्दों को दूसरे मुल्कों में भेजने, उन दहशतगर्दों की पुष्तपनाही करने की बजाय जिन्हें अक़वामे मुत्तहिदा ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से कुछ वक्त निकाले। जनाब त्यागी ने यह भी कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल को चाहिए कि वह आफाकी सोच की हामिल, बामकसद और गैर जानिबदार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन नेटो और अमरीका की फौजी मदद से रूस से अपनी ज़मीन वापस ले सकता था। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि कीव लड़ाई लड़ने और यूक्रेन की अपनी असल हालत को बहाल करने की पोजीशन में था। ट्रंप के मौकफ में यह तब्दीली यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से दो तरफा मुलाकात के बाद हुई है। जेलेंस्की ने जनाब ट्रंप के मौकफ में इस तब्दीली का खैर मकदम किया है। जनाब ट्रंप के इस बयान ने अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के दौरान यकजा हुए कई यूरोपीय रहनुमाओं और सिफारतकारों को हैरत में डाल दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि उनके नज़रियात तब्दील हुए हैं क्योंकि वो फौजी और इकतसादी सूरतहाल को पूरी तरह समझने की शुरुआत कर रहे थे। मर्दों के T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर फोर के कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। ये मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात के अबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने सदर जमहूरिया के जरिए नेशनल फिल्म अवार्ड अता किए जाने की खबर को अव्वल के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने मोहनलाल को, दादा साहब फाल्के और शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक अहम सुर्खी है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मराकश के वजीर दिफा ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के जदीद दिफाई पैदावार मरकज का इफ्तिताह किया। रोजनामा इंकलाब ने आयुष्मान भारत स्कीम से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम सेहत के शोबे में इनकलाबी साबित हुई।
और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर आला रियासत के सैलाब से मुतासर इलाकों का आज दौरा करेंगे, जबकि मगरबी बंगाल में रात भर की बारिश में मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में पाकिस्तान की मजम्मत की है कि उसके सियासी निज़ाम पर फौज का गलबा है और वहां अवाम पर जुल्म ज्यादती की जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो रूस के कंट्रोल वाले यूक्रेन के इलाके को वापस हासिल करने में यूक्रेन की मदद कर सकती है। और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर फोर मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।